पतितानां पावनेभ्यो नमो महापतंगा कृष्ण प्रेम प्रदाय जगत्पते गोपेशमस्तरी
भगवत भजन ही एकमात्र सार है। वेदेषु कर्मयी अहम देव सिद्ध। वेदों का सबका शास्त्र तात्पर्य है भगवान का भजन करना। मैं ही वेद्य हूं, मैंने जानने दी वेद समस्त चारों पाठ करके उपनिषद पाठ करके यदि भगवान को नहीं जाना, उनकी भजन उनका नहीं हुआ तो सब बेकार है। तो आत्मों का अध्ययन किया भी हुआ, सब शास्त्र पढ़ रहे हैं किंतु दो अक्षर नहीं पढ़ा है। या दो अक्षर राम या कृष्ण, ढाई अक्षर, ढाई अक्षर प्रेम। कृष्ण को भी पढ़ लिया, राम को भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया है किंतु उनके प्रति प्रेम या ढाई अक्षर का नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा है। तो इसलिए कहते हैं साधकों का हृदय सख्त के समान है। संसार में बहुत सी जानने की वस्तुएं, सीखने की वस्तुएं हैं। तो जो लोग शास्त्र अभ्यास बचपन से ही अंत तक किया किंतु भजन नहीं किया, केवल अहंकार, विद्या का अभिमान, पांडित्य का अभिमान, रूप का अभिमान, जन्म ऐश्वर्य सुख स्त्री, ये चारों अभिमान हो गए। यहाँ पर आने पर भी तरह तरह के अभिमान हैं, परमात्म पुरुष में बहुत अभिमान है। इन अभिमानों को ही अपने छकड़े पर लाद लिया है, तकत पर लाद लिया है। और असल चीज हाथ नहीं आई तो वो सब असार का प्रश्न। ये योग विद्या जानता था, कंस का मित्र था। कृष्ण को मारने के लिए जितनी प्रकार की विद्याओं का इसने प्रयोग किया, यहाँ तक कि अशरीरी विज्ञान, तो समस्त शास्त्रों को पढ़ करके भी भगवान का भजन जिन लोगों ने नहीं किया और केवल अभिमान उसका हृदय में रख लिया तो ये हार वहां है। अभिनय में कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं अनुधावन के उनके भजन भगवान के प्रति भाव के जीवन का आ गया तो उनका जीवन सार्थक का ये सार ग्रहण किया। जिन लोगों ने बस यही सार ग्रहण नहीं किया और सार तो वो सबका सोचे तो भी यदि शरणागत हो जाए भक्त और सार लेते हुए भी किसी भी स्थिति में सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम शरण, उनका शरणागत हो गया तो भगवान साधकों के इस भारवाही सफर को सारवाही के रूप में बदल सकते। इसको क्या किया, ये जो अशुभ था जब ही कृष्ण ने इसको पैर से उलाकर और स्पर्श हुआ तो ही अपना दैत्य शरीर छोड़ करके वो पहले जो बतलाया था उत्कट बतलाया था उस शरीर को भी छोड़ करके परम दिव्य शरीर धारण करके स्वरूप मुक्ति अथवा कोई भी हो उसको पाकर के चलाया। यद्यपि इसकी अंतिम चरम गति नहीं है, अभी तो गति तो हुई, भगवान का भजन किया न कुछ तो हो गई। उसी प्रकार से तो हम लोगों को भी धारवाही सतत नहीं होना है, सार लेना है, किसी प्रकार का अभिमान न आए। और भगवान का भजन करे संपूर्ण रूप से ये सार ग्रहण का है। अब वो जाता पीड़ा वर्ष बधे नीला सत्या रिंग भंगिका समाज गोपीगण शोषणाय पिता जा गोवत नीचन मोटन। परंतु जैसे अब कृष्ण पहले तो उत्तान सोए हुए थे, अब करवट बदल गया, 3 महीने के हो गए, अब धीरे 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 6 महीने के हो गए, 1 वर्ष के हो गए। जब 1 वर्ष के हो गए अब खाट पर उनको कोई रखना सका पलंग पर, पेट के बल सरक करके उतर जाते और हमागुड़ी घुटनों पर चलना और सरक। कभी कभी किसी के बल ऐसे ऐसे सरक जाते और कभी कभी घुटनों के बल पर सरकते, आप कभी कभी पैरों में जो क्या वो बस रहता है लोगों के सुन सब सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाते और कभी माँ माँ कभी बा बा, आप इतना सुंदर उनसे बोलते मानो माता पिता उनके मुख से अरसमयी अमृतमयी मधुर वाणी सुनने के लिए सब समय वाला ही। धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते कुछ और बड़े हो, आप उनको रोक रखना घर के अंदर में बड़ा भारी कठिन का। एक दिन कोई सर्प निकला काला था, झट उसको पकड़ लिया, उसकी पूंछ पकड़ ली और जब वैसे तन करके खड़ा हो गया तो झट उसके ऐसे पकड़ने जा रहे हैं और ये सब भैया भैया मरिया कर रही है। थोड़ी देर के बाद में जब उसको ऐसे पकड़ लिया तो चुपचाप शांत होकर के नीचे सिर कर लिया और फिर सड़क करके न जाने कहा किधर में चला गया किसी को पता नहीं था। घर में कभी गैया आ जाती या सांड आ जाते तो बैठ जाते तो उनके सिंह दोनों सिंहों को पकड़ करके ही जाता है और वो बड़े बलिष्ठ भयानक यदि सिर ऐसा कर दिया तो ना जाने क्या कर, बड़ी चिंता कर। कोई कुत्ता बैठा रहता जब उसकी दुम पकड़ करके खींचने लगती और वो खड़ा होकर के पूंछ को ऐसे ऐसे करने लगते और उसके मुख में हाथ डालते। कोई अस्त्रधारी है झट उसको पकड़ लेते। अब यशोदा मैया रोहिणी की चिंता केवल यही कि कैसे बच्चे को बचाए, बचाना बड़ा भारी, इसकी रक्षा करना भी बड़ा भारी कठिन हो गया। एक दिन मैया दूध पिला रही थी, देखा आकाश में चक्रवात उड़ रही है, चक्रवात बहुत आकाश में ऊपर, पर चक्कर से नजर पड़ी और देखा और इच्छा हुई कि मैं भी आकाश में उड़ूंगा। अजीब अजीब इच्छाएं होती हैं जैसे बच्चों की, यह न भी जाने कर रहे योग माया ने कहा कि अच्छा मैं तुम ये उड़ा दें आकाश में मत कर। तो वो बार बार ऐसे देख रहे हैं और मैया को जो ऐसे ऐसे दिखला रहे हैं तो अपनी अंगुलियों से मैया ने सोचा जिसको भी उड़ने की इच्छा हो रही है तो उसको यहाँ से ऐसे पकड़ करके उठा दिया और ऐसे ऐसे हिला रही है, देखो ऐसे ही उड़ा जाता है। इसी समय में उनको ऐसे उठाते हुए देख करके आकाश मार्ग में कंस का भेजा हुआ तीना वर्ष और फिर वहां पर से 48 साल में कहीं खींच करके बैठा नंद भवन में सब समय लोगों का आना बोना, इसलिए उसको एकांत नहीं मिल रहा है कि कब वो जाकर के उसको पकड़ करके मार जाए। वो साथ में था कि कैसे ऐसा किया जाए। समय 12 बजे के बाद में रसोई तो बन चुकी है, ऐसे ब्रज में बीच बीच में आंधी तूफान उठते हैं, गर्मी का दिन ही ऐसा बवंडर बनता है, गर्म वायु पलती है और उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं चारों तरफ से घूमते हुए वहां आते हैं। कभी कभी इतनी प्रबल होती है कि बैल गाय आदमी को भी ऊपर उठा करके फेंक देती, बड़ी बड़ी मछलियों को भी ऐसा बार में 10, 20, 50, 100 माइल दूर लेकर के फेंक देती है। जिनसे सबसे बंगाल में ऐसा होता है समुद्र के किनारे के पास, तो वो तृणावत देख रहा था ताक में साझे किया। नंदनंदन ने देखा तो पहले बतलाया है ऐश्वर्य का थाल और माथुर जी का अमृत इसमें रहता है, ब्रज की लीलाओं में आधार तो ऐश्वर्य है। सब समय कृष्ण ऐसा नहीं होगा जो सर्वज्ञ नहीं रहेंगे, सर्वज्ञ तो है किंतु योग माया लीला शक्ति के द्वारा वो कुछ आच्छादन सा होता है, इसलिए लीला रस में डूबे हुए हैं। किंतु देख लिया उनको, ये मरने के लिए हमें आया तो उसको एक सुजोग देना आपको, हमारी मैया को कष्ट न हो और बाकी निपट लिया जाएगा, मैया को कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हमारे साथ में मैया को भी पर आकाश में ले गया तो मैया को बहुत कष्ट होगा, इसलिए खूब गंभीर बन गए, खूब इतने भार बन गए जो ऐसे दुला रहे थे अब अपने हाथों में उसको पकड़ करके रख न सकी, तो वो बैठ गई और बच्चे को भी रख दिया गोद में। इतने में देखा कि और भारी से भारी बन गया तो उसको मट्टी पर लेकर फेरा और इसी बीच में घोर अंधकार छा गया। अब बड़ी संत नाती हुई आंख भी एकदम चली और ब्रज की धूल और बालू और बड़े बड़े कंकड़ों को लेकर के लोगों के आंखों में मुखों में और चारों तरफ एकदम तबाह कर, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए और क्या क्या हो गया, अंधकार एकदम हो गया। कुछ नंदगेह में कुछ गोपियां थी, भग करके दौड़ी, उनके भी बच्चे हैं ना, वो दौड़ी अपने घर उभर जो सुधा जी रह गई। रोहिणी जी को, रोहिणी जी बलदेव जी को लेकर के एक जगह खड़ी हुई, कोई चिंता की बात वैसे थी नहीं, खड़ी हो गई। अब जिन देखा घोर अंधकार जब हो गया और इधर में अंधकार अपने आप आंखें तो बंद हो गई भूल के मारे, आदमी बंद कर लेता है ऐसे ही जाते थे। अब उनको किसी चीज की याद आई लीला शक्ति ने, देखा जो थोड़ा सा अलग होना चाहिए नहीं तो यशोदा जी को भी कष्ट होगा। बस यशोदा जी वहां रख करके समझी कि मैं जल्दी से कोई चीज को जा रही हूँ उसको ठीक करने के लिए, ये लाला भी हमारे साथ में दौड़ता हुआ आएगा या जैसे सरकते हैं ऐसा होता है भैया जहां जाती है बच्चे भी सरकने लगते हैं उधर भी। अभी समझ लीजिए बच्चा हमारे साथ में आ रहा है और वो वहीं पर बैठे रहे और इतने में घोर आंधी और तूफान और सब अंधकार चारों तरफ। अब देखा जी लाला तो है नहीं, खोजती खोजती थोड़ी सी सरक करके नीचे गई जहां पर रखा, हाथ से देखा कहीं, अब तो वो विलाप भी करने लगे इसको अरण्य में रोदन से क्या होता है, उनका रोना सुने कौन, इतनी सनसनाती और ये सब तरफ रहा है इसे किसी ने सुना नहीं। इसके बाद में असुर विपर करके आया और उनको पकड़ लिया कृष्ण, पकड़ करके आकाश में उठा कृष्ण ने उसको ऐसे पकड़ लिया ऊपर ले ले जाने दिया, जितनी दूर उड़ लो एकदम आकाश मार्ग में बहुत दूर पड़ता और जितना चलता गया कृष्ण का पंजा ये कसता गया, श्वास लेना भी मुश्किल हो गया, दम अटक गए और खूब जोर से कस दिया, एकदम श्वास प्रश्वास बंद हो गया। बहुत छोड़ाने की चेष्टा की छूटा नहीं, अंत में रसगुल्ला की आंखें एकदम बाहर लाल लाल आने और बेहोश हो गया, मलमूत्र वहीं से करती है। और वहां से गिरा। इस बार बहुत दूर नहीं गिरा, जैसे पुतना 6 माइल दूर से गई थी, इसलिए गई थी कि उसको खोजने के लिए गोपियां साथ साथ में देखती ही उड़ कर तो ऊपर जा रही है, पीछे से गोपियां दौड़ रही। इस पर अंधकार में कोई ठीक नहीं है कहां गई, कहां कौन लेकर के गया। इसे यदि धूप कहीं चले गए तो खोजना मुश्किल होगा, इसलिए लीला शक्ति ने पास ही में पैर रगड़ने के लिए जो पत्थर का चौकी रखी गई थी, बड़ी बड़ी पटिया, बस उसी के ऊपर में गिरा और चकनाचूर हो गया। सब अलग अलग अंग उसके हो गए। कृष्ण ठीक बीच में वैसे ही पकड़े हुए और एकदम आसानी से नीचे यहाँ पर वो गिरा, उसी के पीठ पर पेट पर खेल रहे हैं। किसको भी गला नहीं छोड़ा, गोपिया दौड़ी हुई आई और झट बच्चे को छुड़ा कर माता जी के पास में पहुंचा। कृष्ण को गोदी में लेकर के रोने लग गए कि तुम्हें नंद बाबा आए। नंद बाबा का भाव देकर के यशोदा की गोदी से नंद बाबा की गोदी में दे दिया गया। किसी अपने आंखों से आंसुओं को पोंछ करके बोले कि कहनी अब कभी घर के आंगन से बाहर मत ले जाने देना इन दोनों बच्चों को, और सब समय की अच्छी तरह से रक्षा कर और सावधानी रहना। दोनों बच्चे एक साथ रहेंगे, आज से दोनों अलग अलग सोते थे घर में, आज अब नहीं, कभी तुम रहना कभी तुम रहना, कभी रोहिणी रहेगी कभी यशोदा जी रहेंगे, और एक ही पलंग पर सुलाना एक ही साथ में, और उन लोगों का पालन पोषण करो, घर से बाहर कभी ना निकले, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और उस दिन से उनको घर में रखा जाएगा। कृष्ण जी से बलदेव जी कितने दिन बड़े हैं,
8 दिन,
ये पूर्णिमा को हुए और वो
अष्टमी
को। अभी तक इन लोगों में भेंट नहीं हुई थी, अलग अलग बच्चे रहते थे, अभी तक मैंने बचपन में जन्म के 5-7 दिन के बाद में इन लोगों का मिलन हुआ। किसी को पता नहीं था कि बलदेव जी भी पैदा हुए हैं, क्यों कहीं कंस को पता न लग जाए इसलिए इसको गुप्त रूप में रखा गया। नामकरण के बाद से तब फिर दोनों बच्चों को एक साथ में कर दिया गया और उन्हें साथ में चलते थे। ये तृणावर्त भूल है, चेतो दर्पण मार्जनम, सिर्फ रूपी दर्पण को आच्छादित करने वाला अनर्थ है, अपराध है। जैसे भूल से दर्पण में देखने की शक्ति बंद हो जाती है, कि बोलती ना मेरे तुम्हारी ना है कि बोलती ना उसी के देख ले वो मन दिया सुना तृणावर्त भूल के समान। जिस प्रकार से दर्पण को धूल आच्छादित कर देती है, अपना स्वरूप पट स्वरूप कोई भी वस्तु उसमें नहीं दिखती, उसी प्रकार से अनर्थ जितने प्रकार के हैं वो तृणावर्त का स्वरूप है। ये अनर्थ साधारण करके 4 प्रकार के होते हैं, स्वरूप भ्रम, असत तृष्ण, हृदय दुर्बल और अपराध, ये 4 प्रकार के। सबसे पहला है
स्वरूप भ्रम।
स्वरूप भ्रम, अपना स्वरूप मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, भक्ति किसको कहते हैं और अनर्थ किसको कहते हैं, इन चारों का स्वरूप जाने। कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, उनका दास हूँ। कृष्ण भगवत्ता की चरम सीमा है, वो कैसे हैं, जगत के आदि कारण है, रस रस स्वरूप है, रसो वैसा है, सर्वशक्तिमान है, अखिल रसामृत और मैं उनका दास इसी नाम से हूँ। स्वरूप में रहने पर भगवान की सेवा कर सकता हूँ और नहीं तो माया के वशीभूत होने पर भगवान से अलग हो जाता हूँ, भगवान को और अपने को नहीं देखती। अंधेरी रात है, अमावस्या की रात है, आंख है, सूर्य नहीं है, उदित नहीं है। उस समय आंखें अपने को या सूर्य को और दूसरों को देख सकती है? नहीं देख सकती, आंख रहने पर भी। इसलिए यदि आत्मज्ञान हो भी जाए किसी कारण से, किंतु परतत्व का कृष्ण का ज्ञान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। और सूर्यदित होने पर उनके प्रकाश से अपने को भी देखेंगे, भगवान को भी देखेंगे और दूसरी वस्तुओं को भी देखेंगे। इसलिए भगवत तत्व का ज्ञान होना ही परम आवश्यक है, जीव के ज्ञान से ही नहीं होगा। इसलिए जीव का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, भक्ति तत्व का ज्ञान, ये कैसे उनको प्रसन्न किया जा सकता है? कोई भी चीज हो भगवान के प्रसन्न करने के लिए किया जाकर उसका नाम सा परानुरक्ति ईश्वरे, भगवान के प्रति परम अनुरक्ति का नाम ही भक्ति। के द्वारा ही भगवान वशीभूत और दर्शन उनका किया जाए, ये भक्ति का स्वरूप होना चाहिए। और अविद्या का स्वरूप जानना भी पड़ेगा। अविद्या क्या है, माया क्या चीज है, जो नहीं है उसी को वह समझना
माया।
संसार की किसी भी वस्तुओं को मैं और मेरा समझना ये माया है। ये सभी यदि है भी तो कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण सेवा के उपकरण है, अपने लिए नहीं। और ये शरीर मैं नहीं हूं, इनका ज्ञान होना चाहिए। ये पहला स्वरूप क्रम असत कृष्ण। जब मैंने शरीर को समझा कि ये मैं हूं, तो शरीर संबंधी खाना पीना भोग विलास संसारिक पदार्थ, उसमें तृष्णा का हो जाना असत तृष्णा। असल में तृष्णा मैंने अभिलाष। यदि भगवान की सेवा का अभिलाष हो तो ये ठीक है, स्वरूप का ये तात्पर्य। और उसके अतिरिक्त जितने प्रकार के अभिलाषाएं हैं वो सब इसलिए हमारे साधक अवस्था में भी जो चीजें भगवान और वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए नहीं है वो सब असत कृष्ण है। यदि परमार्थ भी भक्ति भी अपने सुख के लिए, कि मैं जल तक भटक रहा था, भगवान को पाने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कुछ था अभी तक पहली स्थिति में ठीक होने पर भी ये भी भोग रहा, इसको भी दूर करना होगा। तो ये असत कृष्णाएं हैं, भक्ति का अतिरिक्त अन्य अभिलाष जितनी प्रकार की संसारी कामनाएं वासनाएं, बल्कि अपने अपना मन की जितने भी कामनाएं हैं वो सब असत असत कृष्णा करता है। भगवान का भजन भी यदि हम करना चाहें अपने मन के सलाह से असत कृष्णा होते, इसलिए इसमें गुरु शास्त्र और भगवत वाक्यों को ही भक्ति समझ करके हम उसको पालन करने की चेष्टा करेंगे, अपने मन से नए नए उपाय उद्भावन करके भजन करेंगे, ये भक्ति नहीं। इसलिए एकांत की हरी भक्ति उपापरिव, यदि कोई भगवान का एकांतिक रूप से अपने मन से भजन करे तो क्या होगा, उपाप हो। और अपने मन की को छोड़ करके शास्त्रों में लिखित गुरु के उपदेश भगवान के उपदेश के अनुसार अपने मन को हम चलाएंगे, उसके द्वारा संतुलित होकर के अनुवर्त में, तो ये धर्म देना भी बैठाना साफ करना भी कोई भी काम भक्ति हो जाए। और अपने मन से यदि भजन करने के लिए लाभ परिणाम करें तो प्रभु नम आभार सदाई नम
आपराधा।
इसलिए अपने मन को कंट्रोल करके हरि गुरु वैष्णव के एकांतिक अनुभव से मिले करके चलना चाहिए, असत कृष्णाएं सब दूर। असत कृष्णा यहाँ असत तृष्णाएं हुई, असत तृष्णाएं भी शरीर की तृष्णा और मन की तृष्णा और आत्मा की तृष्णा। आत्मा की तृष्णा तो ठीक है, और जहां तक शरीर और मन की तृष्णाएं हैं ये सब है, किंतु मन की तृष्णा यदि साधु वैष्णवों के बातों के अभिन्न करके यदि चले तब वो ठीक हो जाए। इसलिए बंध अवस्था में भी हम हरि गुरु शास्त्र गुरु
हरिशास्त्र गुरु
साधु शास्त्र और गुरु तीनों के सवैया अस्त्र आज ना कभी हम मने आते और कुछ उसकी मन की आशा मत, अपने मन के कहने में मत चलो। मन बहका देगा इसलिए खबरदार मन के अंतर्गत में मत चलो। मन का मन की बात यदि साधु गुरु और शास्त्र के अधीन हो तो मान लो हरा तो नहीं है, और नहीं तो खबरदार उसकी बात मत सुनो, वो तुमको मन गिरा करके चौपट करे, नई नई बात वो समझाता है, कहता है नहीं नहीं तुम ठीक है। अब गोवर्धन में जाकर के हम वहीं पर स्तुति का निर्माण कर एकांतिक रूप से रोज एक परिक्रमा लगाएंगे, दो तीन लगाएंगे और भजन करेंगे और माधुरी मांगेंगे। गुरु जी क्या कह रहा, शास्त्र में क्या कह रहे, और नहीं तो वो अपना भोग हो जाए। इसलिए अपने मन को कंट्रोल रख, असत कृष्णा यदि असत कृष्णा हो जाएगी तो हृदय दुर्बल हो जाएगा, या मन को कंट्रोल छोड़ दो तो वो दुर्बल हो जाएगा। दुर्बल होने से क्या होगा वो समझा जाइए, मैं भक्ति कर रहा हूं और जा रहा है समुद्र में डूबने के लिए, इसलिए हृदय दुर्बल हो जाए। अच्छा मैंने संकल्प किया भगवत प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता, तो कहीं दिया वो गया, किसी ने राबड़ी लगा लिया और उसके साथ में रसगुल्ले रख दिए, आज आप दीजिए भोग है प्रसाद आप तो नहीं, तो मैं तो नहीं लेता, तो महाराज जी आप सुनिए लगा लीजिए भोग, लगाने की जरूरत क्या है, आप तो जा रहे हैं वहीं पर भोग लग जाएगा। अच्छा तो ठीक ही कर रहे, एक साधु था हमारा जैसा ब्रह्मचारी, जैसे ब्रह्मचारी स्थिति में था, तो भावने के बाद तक घर छोड़ करके चला आया, घर को छोड़कर तो कुछ दिन रहा तो कुछ हाथ आया नहीं, जब देखो ऐसे भंडन नहीं करता, बर्तन नहीं मांजता, ये सभी लोग फुरमाई से ऑर्डर देने वाले हैं, उसमें अभी दो दो दिन के छोकरे भी 50 वर्ष के व्यक्ति को भी आदेश देने लगते हैं, मसला तो मन खराब हो गया ब्रह्मचारी का, सभी लोग आदेश देते हैं और मैं इतना जानने वाला पढ़ने लिखने वाला और ये सब करा है और ये लोग आदेश दे रहे हैं, मन कुछ दिनों के बाद में खराब हो गया और परिणाम कुछ दिन करता था और देखा जी उसे कुछ लाभ नहीं, और वो एक ही बात में भगवान का भजन करो, इसलिए स्थिर न रह सका। घर वाले बुलाते बुलाते इसको हार गए थे, वो नहीं गया, अब उसका मन खराब हुआ तो उसने सोचा जाएंगे और गांव के बाहर में हमारी जो बगीची थी उसी बगीची में हम एक कुटी बनाकर के वहीं रहेंगे, घर कभी नहीं जाएंगे और घर का नहीं टाइम, और वहां ब्राह्मणों के घर में प्रार्थना मधुपुरी कर लूंगा बस। तो जो लोग 5-7 वर्षों से उसे घर नहीं किसी प्रकार से ले गए, आज अपने आप जब घर गया तो गांव वालों को भरा नहीं, गांव वाले पूछा, गांव वाले सब आते हैं, वो बगीची में खर गया वहां, बहुत लोगों ने कहा कि घर पर चलिए, वो गया 5-6 दिन वही रहा। इन्होंने कहा कि तब क्या किया जाए, कुछ मड़ैया बना दी जाए तो उसी में रहेगा, तो 5-6 दिन के बाद में उन लोगों ने बहुत अच्छा, एक बार तो घर में चलो फिर तुम्हारे ना शाम को घर में परिचित तुम्हारी मैया है, तुम्हारी पत्नी है और है, थोड़ा सा कुछ बना दे भोजन करके चला, अपने घर में हम लोग भी ब्राह्मण ही तो हैं, मातुश्री कर लेना जब आप जीत कर अच्छी बात है तो चल घर गया तो दो एक दिन आया गया गृहिणी ने कहा रोज रोज आने जाने से ये ठीक नहीं अरे यहीं पर तुम्हारा पहले वाला घर उसमें रह जाओ यहाँ पर भोजन कर लेना दिन रात में भोजन कर लेना अच्छी बात है ठीक ही बात फिर कुछ दिन के बाद में एक दिन मछली का पानी भोग ले आए तो रसा होता है ना रसा बंगाल में होता है ले आई सर रोज दिन खाते हैं हम आपके लिए अलग से कैसे रोज बनाए बाल बच्चे हैं और तुम्हारी महिला है और सब है जो पल गया उसी को ठाकुर जी को भोग अपने आप दे लीजिए रोज रोज इतना अलग अलग से नहीं अच्छा तो कह रही इस तरह से करते 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 इसको कहते हैं चित्त की दुर्बलता जब तक चित्त दृढ़ नहीं होगा नित्य आत्म बुद्धि नहीं होगी तो ऐसे ऐसे चित्त क्रमश विषय लोगों के संग में चित्त असक्त हो जाता है घट छोड़ करके बड़े उत्साह के साथ में हम लोग आए या भजन करना आरंभ किया और कुछ देरों के बाद में वो दृढ़ता कम जाती है वैष्णव से स्नेह कम होता जाता है विषय लोगों से स्नेह और धीरे 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 मत में रहने से भी किया लाल कपड़ा से भी किया चित्त तो विषय में आकृष्ट हो गया इसको कहते हैं हृदय की दुर्बलता हृदय की दुर्बलता में कई अपराध होगा अपराध क्या कितने दुर्बलता आई अपने भोगों के लिए और किसी बच्चियों ने कहा ऐसा मत करना मैंने मैं क्या खराब करता हूं मैं तो उनसे हरी कथा ही बोलता हूं इसे लोग नहीं नहीं ऐसा मत करना बस उनके प्रति अवज्ञा कर दिया अपराध हो गया इसी तरह से विशेष विशेष विश्व में नमापराध क्षमापराध सेवापराध दूर अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदा इत्यादि सब आकर के उसे चौपट करके फिर संसार में ले जाता है इन चार प्रकार के अनर्थों को ही शिलावक्त माना गया इन लोगों से हमको दूर रहना चाहिए अब कृष्ण थोड़े से और बड़े हो रहे हैं कुछ नित्य लीलाएं हैं और कुछ नैमित्त कृष्ण की लीलाएं हैं दोनों में प्रभेद यह है जो नित्य लीला होती है वो लीलामयी एकदम होती है उसमें कोई आध्यात्मिक शिक्षा इत्यादि से लेने की कोई जरूरत नहीं नैमित्त लीलाओं से ही कुछ शिक्षा ली जाए कृष्ण नाच रहे हैं और गोपियां ताली बजा रही हैं और कह रही हैं छे 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 खूब सब छे बजा करके ताली बजा करके छे 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 सात छे 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 और कृष्ण ऐसे कर रखे हैं और स्वच्छ आवाज रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा जो सुदा मैया नहीं देख रहे गोपियां हैं और ताली बजा करके वाह कितना सुंदर मथुर नृत्य कर रहे अब इसलिए से क्या शिक्षा करें किस प्रकार ही कृष्ण की लीलाओं में ये नृत्य लीला है ऐसी सब लीलाओं को वो करते हैं सब गोपियां इसी उनके नृत्य को देखने के लिए आ जाएंगे नंद बाबा से जो कह रही हूं एक दिन आ गई देखा जी यशोदा जी बड़ी बेमन की हो रही है बेमन की मैंने क्या अनुमानदार कुछ चिंतित हैं इसलिए हम कृष्ण की रक्षा नहीं कर पाए आपने कहा उन्होंने कहा मैंने जो कहा था कि कृष्ण की रक्षा करना घर से बाहर नहीं जाने चाहिए मेरी इस आज्ञा से का पालन तो ठीक से चल रहा है कई दोनों बच्चे तो नहीं निकल जाते कई बार अच्छी से संभाल करके रख तो रही वो जानते हैं इसकी सारी चिंताएं क्या एक ही कारण है, भगवत चिंतन। हम लोगों को भी चिंताएं तरह तरह की, कभी लौकिक कभी पारमार्थिक भी हो सकती है। कृष्ण का भजन नहीं हुआ, सारा जीवन ऐसे ही गया, इतना दिन हो गया, अभी अनर्थ नहीं गया, रुचि नहीं भगवान नाम में हो रही है, हरि कथा में रुचि नहीं हो रही है, ऐसे भी था। और कभी कभी हो जाती है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई प्रताड़ना कर दिया, किसी ने कोई छह दिया, कोई किसी ने कर दिया, कोई विपत्ति आ गई हठात, इसके लिए भी चिंता होती है। साधारण जो व्यक्ति हैं, अभी जो स्वनिष्ठ हैं, इन विपत्तियों में पकड़ा जाता है, और परमार्थिक लोगों का उत्साह बढ़ता है, उनको भय नामक कोई चीज नहीं, और स्वनिष्ठ हैं इन विपत्तियों में घबरा जाएंगे और दिन रात इसकी चिंता करेंगे। और जिनको निष्ठा हो गई है निश्चित, क्या उसका मतलब है, परिनिष्ठ, परिनिष्ठितों को इसके लिए चिंता नहीं, उनके लिए क्या चिंता होती है, नाम तो कुछ हुआ किंतु अनर्थ मुक्त अवस्था में नहीं हुआ, आंखों में आंसू नहीं छलक आए, रोमांच नहीं हुआ, दिन रात कृष्ण का चिंतन नहीं होता, स्वप्न में दूसरी दूसरी बातों को देखता, आज अपने पिताजी को देखा, अपनी बहन को देखा लड़ते हुए झगड़ते हुए, कभी मैया को डांटते हुए देखा, कभी किसी से लड़ते हुए अपने को देखा, जिन जिन चीजों में आवेश था उसको देखते, किंतु एक बार भूल करके भी अच्छी या किसी रूप में धाम संबंधी, कृष्ण संबंधी, भगवत संबंधी, गुरु संबंधी, ये सबको आता नहीं, ये क्यों नहीं, इसका मतलब ये आवेश नहीं है, जिसको आवेश होगा वही तो देखा जाइए, तो इसके लिए चिंता कर सकते, ये तो परमेश्वर का है। और जो एकांतिक है उनके लिए क्या होगा, क्योंकि भाव तो सुंदर नहीं है, प्रेम नहीं कृष्ण के लिए हुआ, उसके लिए रोता पड़ता है, उसके लिए बस वही चिंता है कि कृष्ण नहीं है, सारा जीवन दर्शेगा। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी और नरोत्तम ठाकुर जी, गोविंद दास जी रोते हैं, बोला पहू ना सोचा प्रेम रतन धन हिलाए, अधने जतन करी धन त्यागिन आपने कर्म दोषे आपे निधि केने वाछय प्राण लगिया नरोत्तम दास के नाम। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं वृद्ध काल आओ तब सुख पाओ, भोगा भावे दुखी अंत, अब मरने का समय आ गया, अब प्राण जाने बाकी है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, भोगों के लिए चिना जीवन है ना भजिला
प्राण रोधी जीवन
है, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं। कौन है ये, यदि साधकों को भी मान लिया जाए तो एकांतिक में रखा जाए, है तो मुख्य, किंतु हम लोगों के लिए एकांतिक भक्त का वो अभी नहीं, हम लोगों को उन्हीं का ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से हाथ के साथ में तो ये यशोदा जी की चिंता क्यों है कृष्ण के लिए, उनके सुख में सुखी, दुख में दुखी, अब कैसे उनको सुख, और हमारी अभी बहुत सी चिंता है। भागवत में भी ऐसा कहा गया है, परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी का, हमारे सुनने के लिए बहुत से विषय हैं, चिंतन करने के लिए बहुत से विषय हैं, प्रथम के तृतीय अध्याय के पहले से बहुत से विषय है। हम मनुष्यों के लिए सोचने के लिए लाखों, लड़की की शादी करना है कहां से रुपया आएगा, दुकान में कुछ रुपया कम हो गया उसके लिए चिंता, हम लोगों के लिए चिंता, इधर शरीर के लिए चिंता, तरह तरह की चिंताएं हैं सुनने के लिए करने। और यशोदा जी और भक्तों के लिए क्या है, एकमात्र चिंता कृष्ण की रक्षा की चिंता है। तो वो नंद बाबा से बात कर रही है,
कल की बात मैंने किसी से कही, मैंने फुर्सत नहीं पाई इन दोनों कुमारों के लिए, इनको 24 घंटा रक्षा करनी पड़ती है, कभी बाहर जाते हैं कभी भीतर आते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी सातों के उठने में, कभी कुछ कभी कुत्ते के मुख में हाथ, कभी आग पर ऐसे पकड़ लेते हैं। एक दिन की बात है, वो कह रही है नंद बाबा, एक दिन की बात घर से निकल गया है मैंने कैसे दोनों घुटनों पर, और देखा कि घर के बाहर ही कांटों का ढेर है, रक्षा के लिए कांटे लगा रखते हैं ना बेड़ा के रूप में प्राचीन के रूप में, और उसके पर में फूल की लताएं चली गई है, बेल फूल है या कोई गुलाब में भी लता होती है या कोई ऐसा फूल जिससे सुंदर फूल हो सुगंधित, और वो कांटों के ऊपर पर है और थोड़ा सा नीचा हो गया है कांटों में जा रहा है, दोनों को रोक हो गया है।